ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी बहन, आपको जरूर यहाँ कल से लेकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। यहाँ का जो वायुमंडल है, शांति के वाइब्रेशंस हैं, आत्मिक स्नेह का वायुमंडल है, वो जरूर बहुत हमें सुख देता है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। जहाँ भी जिस भी स्थान से आए हैं, वो स्थान में भी आपका विशेष कार्य है, परिवार है, लेकिन ये स्थान में दिव्यता है। नहीं, इस स्थान में बहुत अंतर है। कौन सा अंतर है ये स्थान में, यहाँ के वायुमंडल में, वाइब्रेशंस में क्या अंतर है जी? पीस है, शांति है, दिव्यता है जी। तो हम देखते हैं कि आप सभी को कोई ना कोई रूप से इन्विटेशन मिला है, इसलिए आप कल से यहाँ इस विशेष कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति ने या कोई भी बहनों ने आपको निमंत्रण दिया हो, उसके पीछे आप यहाँ ईश्वर के निमंत्रण से आए हैं। परमात्मा गॉडली इन्विटेशन देकर, किसी न किसी को इंस्ट्रूमेंट बनाकर आपको यहाँ ले आए हैं। और जैसे बहन ने कहा कि ये बहुत सुंदर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, जहाँ परमात्मा पिता हमें रोज पढ़ाते हैं, और हम भी सब स्टूडेंट्स हैं, और रोज हमारी एक स्पिरिचुअल स्टडी चलती है। और इस टीचिंग्स में, इस पढ़ाई में सबसे मुख्य सब्जेक्ट जो परमात्मा हमें सिखाते हैं वो है राजयोग। राजयोग एक बहुत सुंदर विधि भी, कि कैसे हम मन बुद्धि को ईश्वर के साथ जोड़ें और उनसे शक्तियों का अनुभव करें, और एक सुंदर जीवन शैली भी, राजयोगी लाइफस्टाइल भी परमात्मा हमें सिखाते हैं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में भी उसी शांति, प्रेम और खुशी को अनुभव करें। जो यहाँ के वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस हम अपने साथ ले जाएं और अपने घर में और अपने कार्य क्षेत्र में भी ऐसा वायुमंडल बनाएं। ऐसा संकल्प है आपका, ऐसा संकल्प है ना, यही लक्ष्य से आप यहाँ आए हैं। तो ऐसा ही वायुमंडल आप फिर अपने घर में, परिवार में और अपने स्थान जहाँ कार्य आप कर रहे हैं वहाँ बनाएंगे। तो उसके लिए ही परमात्मा हमें ये शिक्षाएं देते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, कल भी हमें दीदी ने मेडिटेशन अभ्यास कराया, तो बार बार ये शब्द आप सुनते हैं मेडिटेशन के आरंभ में कि मैं आत्मा हूँ। हमें अपने आप को थोड़े समय के लिए इस शरीर से न्यारा होकर उस आत्मिक स्थिति में स्थित करना है। अब ये शब्द तो हम सुनते हैं, और शायद हमने भी ये शब्द का कभी कभी वर्णन किया है। कहाँ भी हमें ऐसा समाचार किसी के देहांत का, मृत्यु का सुनते हैं, तो क्या मैसेज भेजते हैं, क्या मैसेज भेजते हैं? उनकी आत्मा को शांति हो, RIP, नहीं, रेस्ट इन पीस। तो किसको शांति मिले, किसको रेस्ट करना है, क्योंकि शरीर तो शांत हो ही चुका है, तो हमने फिर किसके लिए शांति की प्रार्थना की? आत्मा के लिए। शरीर को तो हम फिर प्रकृति में सौंप देते हैं सम्मान से, प्रार्थना से, लेकिन किसके लिए हमने कहा कि उनको शांति मिले? वो आत्मा के लिए। तो ये शब्द का वर्णन है, इसके बारे में शायद हम थोड़ा थोड़ा कभी अनुभव भी करते हैं, लेकिन इसका ज्ञान क्या, ये कौन है, ये आत्मा कैसे इस शरीर के द्वारा कार्य करती है, इसकी नॉलेज परमात्मा हमें देते हैं। तो राजयोग का पहला लेसन ही है स्वयं को पहचानना, अपने इस आध्यात्मिक पहचान को जानना, और परमात्मा स्वयं ही आकर हमें अपना और अपना, हमारा परिचय देते हैं। तो ये प्रश्न जो है, जो देख रहे हैं हम कि हु एम आई, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछना है। ऐसे अगर कोई आपको कहे ये प्रश्न पूछने के लिए, तो आपको थोड़ा सा अचरज लगेगा, आश्चर्य लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा कि ये क्यों पूछना है, मैं तो अपने आप को जानता हूँ। नहीं, ऐसा ही फील करते हैं कि हम तो अपने आप को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आज आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फिर से अपने आप को ये प्रश्न पूछें कि मैं कौन हूं, क्योंकि शायद हम जिस व्यक्तित्व को अपना संपूर्ण व्यक्तित्व समझते हैं वो हमारा बाह्य व्यक्तित्व है, प्राप्त किया हुआ स्व है, एक्वायर्ड आइडेंटिटी, एक्वायर्ड सेल्फ। जैसे ही हमें प्रश्न किया जाता है कि आप कौन हैं कोई संगठन में, तो हम अपना परिचय देते हैं ना, नेटवर्किंग के लिए बिजनेस और इंडस्ट्री में तो लोगों से संबंध संपर्क बनाना बहुत बहुत जरूरी है, कारोबार के लिए, परिवार के लिए भी। तो अपना परिचय जब देते हैं तो हम क्या बताते हैं, क्या बताएंगे, नाम बताएंगे अपना और आपका कारोबार, किस स्थान से आप आए हैं और आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका कौन सा स्टेट है, भाषा, धर्म, आपकी विचारधारा। तो ये सारा जो परिचय हम देते हैं अपने बारे में, ये परिचय तो राइट है, लेकिन इस परिचय के साथ हम एक शब्द यूज करते हैं, मेरा नाम, मेरा कार्य, मेरा परिवार, मेरा स्टेट, मेरी भाषा, मेरा धर्म, मेरी विचारधारा, मेरा शरीर। शरीर भी कौन है, मेरा है, मुझे बिलोंग करता है। जैसे यहां मैं कहूंगी ये मेरी बॉटल है पानी की, भाई लेकर आए हैं लेकिन इस समय मुझे बिलोंग करती है, तो मैं जब चाहूं इस बॉटल से पानी पी सकती हूं, ये मेरी बॉटल है। लेकिन मैं बॉटल तो नहीं हूं, नहीं, बॉटल तो मुझसे अलग है। तो हम जिसको भी मेरा शब्द यूज करते हैं, जिसके भी आगे, वो वस्तु, वो व्यक्ति मुझसे भिन्न है, अलग है, और वो मुझे बिलोंग करता है, मुझे प्राप्त हुआ है। अब हमने नाम के लिए भी कहा मेरा नाम प्राप्त हुआ है, कार्य के लिए भी कहा मेरा कार्य, परिवार के लिए भी कहा मेरा परिवार, शरीर के लिए भी क्या कहा, मेरा शरीर। तो शरीर भी प्राप्त हुआ है, तो मैं कौन? अपनी जो भी हमारी शिक्षा है, हमारी योग्यताएं हैं, उसके लिए भी हम कहते हैं भाई ये मेरी योग्यताएं हैं, मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, वो भी मेरा है। मेरा पद है, पोजीशन है, अचीवमेंट्स है, वो भी मेरी अचीवमेंट्स है, मेरा पद है। तो मैं कौन? तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी परिचय से आज हम आपस में लेन देन कर रहे हैं, वैसे वो मेरा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो वो सब कुछ मेरा है, माय रोल, माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माय रिलेशनशिप्स, माय वर्क। तो मेरा है माना मुझे प्राप्त हुआ है, वो मेरा बाह्य स्व है, एक्वायर्ड आइडेंटिटी है। तो मैं कौन? फिर ये प्रश्न रह जाता है, मैं कौन? क्योंकि हम शब्द तो प्रयोग करते हैं सारे दिन में, मैं ये कर रहा हूं, मेरा ये विचार है, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा महसूस करता हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। तो मैं शब्द तो कहते रहते हैं, कहते हैं ना, मुख से भी कहते हैं, मन में भी कहते हैं, तो ये मैं कौन? तो जब आप ये अपने आप को प्रश्न पूछते हैं तो अंतर में क्या जवाब आता है? इस समय भी अगर आप ये प्रश्न अपने आप को पूछें तो अंतर में क्या उत्तर आता है, मैं कौन? जी, आत्मा, ठीक है। तो ये शब्द है लेकिन फिर भी हमने इसको कभी समझा तो नहीं, अनुभव तो किया नहीं। सुबह से रात तक तो किस मैं के स्मृति में हम चलते आते हैं, किस मैं की स्मृति में? अपने शरीर, अपने बाह्य व्यक्तित्व, जिसको हम रोज मिरर में देख रहे हैं ना, उसी को मैं समझते हैं। तो कहने में कहते हैं मेरा शरीर, लेकिन स्मृति में क्या है, मैं शरीर। तो मैं ये कार्य, मैं ये जिम्मेवारी, मैं ये पद, मैं ये अचीवमेंट्स है ना? तो अवेयरनेस लेवल पर, स्मृति लेवल पर मैं ये बाह्य व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया है। अब ये तो ठीक है ना, कारोबार तो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, फिर क्यों हमें फिर से इस आंतरिक व्यक्तित्व, इस आत्मिक व्यक्तित्व, इस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, इस आंतरिक स्व से जुड़ना आवश्यक है? क्यों आवश्यक है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये आंतरिक व्यक्तित्व ये एक आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके लिए हम कहते भी हैं कि हम एक मनुष्य आत्मा है, ह्यूमन बीइंग है, कहते हैं ना साधारण रूप में। तो ह्यूमन, ह्यूमस शब्द से आता है, ग्रीक या लैटिन भाषा में इसको हम ह्यूमस कहते हैं, अर्थात मिट्टी, अर्थात सॉइल, मैटर, और बीइंग अर्थात वो सुंदर ऊर्जा, वो दिव्य ऊर्जा, वो लाइट, वो सुंदर एनर्जी। तो हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहते हैं, लेकिन स्मृति में, अवेयरनेस में क्या है, सिर्फ ह्यूमन है, क्योंकि उसके बारे में ही हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है। तो ह्यूमन हम ये बाह्य व्यक्तित्व को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, प्लस बीइंग, जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है तब इसको हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं। मृत्यु के समय पर क्या हो जाता है, हम कहते हैं इन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो शरीर किसने छोड़ा, किसने छोड़ा, आत्मा ने। तो जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब वही हम देखते हैं, परिवार का सदस्य है जिससे हम रोज मिल रहे हैं, बहुत समीप संबंध है, और जैसे ही हम देखते हैं समाचार मिलता है या परिवार का ही समीप सदस्य है वो, उनका देहांत हो जाता है, तो अब हम जब उनको याद करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सदस्य अब नहीं रहा, मेरा ये अंकल है, आंटी है, मित्र है, ये संबंधी है, वो अब नहीं रहा। अब जब हम स्थान पर पहुंचते हैं परिवार में, हम उनके शरीर को तो देख रहे हैं, देखते हैं ना शरीर को, हम प्रार्थना करते हैं, हम उनको सम्मान करते हैं, तो शरीर वही है जिसके साथ हमारा संबंध रहा है, कारोबार रहा है, लेन देन रहा है, जिसके साथ हमारा उठना बैठना था, वो शरीर तो वही है। फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारा वो मित्र, हमारा वो संबंधी अब नहीं है। क्यों हमने ऐसा कहा, जिनके साथ लेन देन कर रहे हैं वो शरीर तो वही है, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारा ये संबंधी अब नहीं रहा, वो चला गया, ईश्वर के पास चला गया, हमसे दूर चला गया, और हमें बहुत दुख भी होता है, हम आंखों से आंसू भी बहते हैं, हम कहते हैं ये चला गया। तो शरीर है वहां, फिर भी हम कहते हैं चला गया, तो कौन चला गया, आत्मा चली गई। अर्थात हमारा जीवन भर भी संबंध किसके साथ था, किसके साथ था, शरीर के साथ था या आत्मा के साथ था, क्योंकि अब शरीर तो वही है, फिर भी हम कह रहे हैं कि वो मेरा संबंधी, मेरा अंकल, मेरी आंटी, मेरा मित्र नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है। तो हमारा संबंध किसके साथ था, किसके साथ था, आत्मा के साथ। तो जीवन भर हमारे संबंध किसके साथ है, आत्माओं के साथ है, और हमने सारा जीवन जब संबंध निभाया किसको याद किया, दैहिक शरीर और संबंध को ही याद किया, लेकिन वास्तव में हमारा संबंध तो आत्मा के साथ है। हमारे संगठन में कुछ डॉक्टर्स भी हैं, तो हम देखते हैं कभी हॉस्पिटल में, जैसे बताया दीदी ने कल के बॉम्बे में भी हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारी के सिस्टर कंसर्न से मैनेज हो रही है, तो वहां हम देखते हैं कि कई बार इमरजेंसी पेशेंट आता है, कैजुअलिटी में आता है, सीधा कहा जाता है इनको आईसीयू में ले जाओ, डॉक्टर्स उनके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, कभी कभी इमरजेंसी में सर्जरी करते हैं। अब जब एडमिट होते हैं तब आईपीडी में कहा कि फलाने ये व्यक्ति नाम जो है एडमिट हो गए, लेकिन जैसे ट्रीटमेंट आदि आईसीयू में शुरू होता है, उनको शायद इमरजेंसी में सर्जरी करते हैं, डॉक्टर्स बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद सर्जरी के बाद वो व्यक्ति सर्वाइव नहीं होता है, निहांत हो जाता है। अब डॉक्टर जाकर परिवार वालों को कहते हैं कि हमने कोशिश की लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए। अब जब इस हॉस्पिटल से बाहर आता है तो वो कौन है? वो उस व्यक्ति का शरीर है। अब कहेंगे कि अब इस व्यक्ति का शरीर जो है वो उसके परिवार को सौंपना है, हैंड ओवर करना है उनके रिलेटिव्स को। तब आईपीडी में नीचे नाम तो उस व्यक्ति का लिखा है, लेकिन अब उसको हम उस नाम से नहीं पुकारते हैं। हम क्या कहते हैं कि इनका शरीर है, ये राम प्रकाश जी का शरीर है। तो वो राम प्रकाश जी कहां गए? वो व्यक्ति कहां चले गए? कहां चले गए? वो आत्मा जिसको हमने उस नाम से कहा, वो उसने शरीर छोड़ा। तो हम देखते हैं कि जीवन भर जो हम कार्य कर रहे हैं, संबंध में आ रहे हैं, वास्तव में ये सारा कार्य कराने वाली आत्मा है। और जब हम अपने आप को पूछें कि मैं कौन, शाब्दिक रूप में तो हमने शरीर को क्या कहा? मेरा शरीर। तो फिर मैं कौन? मैं कौन? टेक्निकली फिर मैं कौन? शरीर के लिए तो कहा मेरा है, तो मैं कौन? कौन कह रहा है ये मेरा शरीर है? मैं आत्मा हूं। लेकिन हम देखते हैं कि ये शब्द से तो हम टेक्निकली समझ जाते हैं, लॉजिकली समझ जाते हैं, लेकिन स्मृति जो है, भावनाएं जो है, अवेयरनेस जो है, सुबह से रात तक किसकी है? किसकी है? अपने आप को हम क्या समझते हैं? शरीर। और इसलिए हम देखते हैं कि सारा जीवन हमने अपने आप को शरीर समझा, और आसपास भी हम कारोबार में जिनके साथ भी मिलते हैं वो भी अपने आप को शरीर ही समझते हैं। तो सारी लेन देन हमारी किस आधार से है? इस शरीर की, देह की स्मृति से है। हमने जीवन भर इसकी प्रगति, इसकी उन्नति, इसको सशक्त करने के लिए प्रयोजन किए, प्रयास किए, समय निकाला, महत्व दिया। अब हम देखते हैं कि ये बाह्य व्यक्तित्व, उसके साथ ये आंतरिक व्यक्तित्व। अब अगर हमें जीवन में सदा सफल रहना है, चाहे बिजनेस, इंडस्ट्री, संबंध है, उसमें सदा सफल रहना है, तो इन दोनों ही व्यक्तित्व में से मालिक किसको होना चाहिए, निर्णय किसको लेना चाहिए, बॉस किसको होना चाहिए, बाह्य व्यक्तित्व को या आंतरिक व्यक्तित्व को? किसको होना चाहिए? डिसीशन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए? लीडर कौन होना चाहिए? जी पीछे से आवाज नहीं आ रही है, पक्का? श्योर? क्योंकि मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में? बाह्य व्यक्तित्व जो है वो परिवर्तनशील है। शरीर जो है, हमें गीता में भी कहा गया है, ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, इसलिए ये नश्वर है। आत्मा जो है वो अविनाशी है। मस्तक के मध्य में ये जो सुंदर आत्मा है, उसके लिए ही गायन है, गीता में लिखा है कि ये अजब सितारा है, ये अजड़, अमर, अविनाशी है। अजड़, जड़ माना मैटर, स्थूल, तो आत्मा जो है अजड़ है, जड़ नहीं है, लिविंग एनर्जी है, चैतन्य शक्ति है। अमर मृत्यु, तो इसलिए शरीर जो है उसकी मृत्यु होती है, वो मॉर्टल है, और आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो अमर है, इमॉर्टल है। शरीर विनाशी तत्व से बना हुआ है, इसलिए बाह्य वातावरण का प्रभाव तत्वों पर पड़ता है। आत्मा जो है वो अविनाशी है, ना उसको जल डुबा सकता है, ना उसको आग जला सकता है, ना उसको छुरी काट सकती है, तो वो अविनाशी है। इस दोनों ही अंतर के हिसाब से फिर हम जब अपने आप को देखते हैं तो हम समझते हैं कि हम आत्मा है, क्योंकि हम तो अविनाशी शक्ति है, और आत्मा को ही जीवन में नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन इस समय नेतृत्व कौन कर रहा है? इस समय बॉस कौन है? इस समय मालिक कौन है? बाह्य व्यक्तित्व या आंतरिक व्यक्तित्व? बाह्य व्यक्तित्व। इसलिए आज जीवन में इतना कियोस है, इसलिए आज जीवन में इतनी अशांति है, इसलिए आज जीवन में हम देखते हैं असंतुलन है। अब ये आंतरिक व्यक्तित्व नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा है? जब यही अविनाशी है, मैं हूं ही आत्मा, तो ये हमारे दैनिक जीवन में नेतृत्व क्यों नहीं कर रहा है? ये इसकी स्मृति हमें नेचुरल रूप में दैनिक जीवन में क्यों नहीं रहती? क्यों ये बॉस नहीं रहा? क्यों ये मालिक बनकर हर राइट निर्णय नहीं ले रहा है? क्यों ये प्रभावित हो जाता है वातावरण से, परिस्थितियों से? अब अगर हम देखें, सुबह से रात तक हम जो समय दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बिजनेस में हैं तो हर चीज को आप इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, तो अगर हम देखें सुबह से रात तक जो हमारा समय है, संकल्प है, ऊर्जा है, इन्वेस्ट जो हम कर रहे हैं, वो बाह्य व्यक्तित्व के प्रगति के लिए कितना समय हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आंतरिक व्यक्तित्व के प्रगति के लिए कितना समय हम इन्वेस्ट कर रहे हैं? कितना समय हम जीवन में बाह्य व्यक्तित्व को सुंदर और सशक्त करने में दे रहे हैं और कितना समय हम ये आंतरिक व्यक्तित्व को सशक्त, सुंदर, प्रभावशाली बनाने में दे रहे हैं? अगर हम कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट दिखाई देती है? प्रैक्टिकल जीवन में क्या दिखाई दे रहा है? सुबह से रात तक हमारा समय, टाइम, एनर्जी, थॉट, अटेंशन जो है, उसका इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में है, किस व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में है? बाह्य व्यक्तित्व, उसी को सफल, उसी को सुंदर, उसको ही प्रभावशाली, उसको ही शक्तिशाली और उससे जुड़े हुए संबंध, कारोबार, उसमें प्रगति के लिए हम दे रहे हैं। आंतरिक व्यक्तित्व के लिए तो समय रहा ही नहीं या निकाला ही नहीं। नहीं, हम समय किसके लिए निकालते हैं? जो चीज की हमें प्रायोरिटी है, जो चीज को हम महत्व देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप यहां हमारे पास पहुंचे हैं, क्योंकि आपने इस चीज को महत्व दिया, इसलिए समय निकाल कर आए ना। सबके बहुत बिजी शेड्यूल्स, नहीं, आप सब ने समय निकाल कर अपने टाइम को, अपने कारोबार को एडजस्ट करके यहां आए, क्योंकि आपने इस चीज को महत्व दिया। हम देखते हैं कि हमने कहीं ना कहीं इस आंतरिक व्यक्तित्व को महत्व नहीं दे पाए, इसको जान नहीं पाए, इसलिए आज जीवन में हमारा इसकी प्रगति के लिए, इसको सशक्त बनाने के लिए कोई भी समय इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। शायद थोड़ा बहुत हम इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, अगर हम ऑनेस्टली देखें तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति में हैं, थोड़ा प्रार्थना, थोड़ा भक्ति, थोड़ा धर्म, थोड़ी हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, तो थोड़ा समय शायद निकाल भी लेते हैं। लेकिन वो समय जो हम निकाल रहे हैं, उसमें कितना अपने को सशक्त बना रहे हैं, जो गुण और शक्ति हम अपने आप में भर रहे हैं, वो फिर हमारे डेली लाइफ को कितना प्रभावित कर रहा है, कितना वो शांति को, शक्ति को, सकारात्मकता को हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना। शायद थोड़ी एक एक्टिविटी के रूप में हमने थोड़ा भक्ति, प्रार्थना आदि की है, लेकिन फिर डेली लाइफ में उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, उसका प्रभाव, उसका इंपैक्ट बहुत कम दिखाई देता है। तो इसलिए यहां परमात्मा हमें राजयोग के द्वारा ये ज्ञान देते हैं। तो परमात्मा ने ही आकर हमें आत्मा का परिचय दिया है और फिर हमें वो विधि सिखाते हैं, वो टूल देते हैं, प्रैक्टिकल टूल, जिससे आत्मा को हम सदा सशक्त रख सकते हैं। जैसे हम यहां, भले आप यहां प्रोग्राम के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं सुबह उठकर ही पहले हम ध्यान क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान रखकर हम अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, करते हैं ना, या कोई कोई ने चार्जिंग पर रख के आए होंगे, क्योंकि सारा दिन हमें उससे कारोबार करना है, आपको थोड़ा अपने ऑफिस आदि का भी जो मेल है वो चेक करते रहना है, वहां बातचीत करनी है। कोविड के समय पर सुबह सुबह उठकर क्या करते थे हम, क्योंकि उस समय तो सब कुछ टेक्नोलॉजी के आधार पर था, तो सुबह सुबह उठकर बच्चों के लिए भी लैपटॉप चार्ज करो, आईपैड चार्ज करो, फोन चार्ज करो, क्योंकि सब कुछ उसी के आधार पर है, है ना। तो इसका हमने ध्यान रखा, लेकिन आत्मा को चार्ज करना, सोल पावर को रिचार्ज करना, सशक्त करना, एम्पावर करना, उसको रिजुविनेट करना, तो इसकी जिम्मेवारी हमने नहीं ली, क्योंकि शायद हमने आत्मा के बारे में जाना नहीं। हम स्मृति उसी के रख सकते हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान है, अनुभव है। शरीर को हम देखते हैं, इसकी समझ है, इसको हम अनुभव करते हैं, इसी की स्मृति में हम रहते हैं। तो यहाँ परमात्मा ही बैठकर हमको राजयोग में ये पहला लेसन सिखाते हैं। तो जैसे हमने देखा, शरीर एक बहुत वैल्यूबल एक रथ के रूप में है, व्हीकल के रूप में, और आत्मा उसकी बहुत बहुत वैल्यूबल ड्राइवर है। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि शरीर व्हीकल है और आत्मा उसकी ड्राइवर है। ड्राइवर व्हीकल में कहाँ बैठता है? आप ड्राइव करते हैं व्हीकल्स को, कहाँ बैठते हैं? आगे में बैठते हैं, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। तो आगे में क्यों बैठते हैं? ड्राइविंग सीट आगे क्यों है जी? चलाना है तो आगे में क्यों? चलाने के लिए आगे क्यों? रास्ता देखना है। अच्छा ठीक है, आपको सामने रास्ता देखना। और आगे में क्या है? आपके स्टीयरिंग व्हील है, आपका इंजन, सब कंट्रोल सिस्टम्स कहाँ है? आगे में। आजकल तो और ही टेक्नोलॉजी से सुविधाएं हो गई है, नहीं? टेक्नोलॉजी भी आपको गाइड करती है, मैप्स आदि सब कुछ, लेकिन सब कुछ कहाँ है? आगे में, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। विदेश में कहाँ गाड़ियां लेफ्ट ड्राइव करते हैं, लेकिन सब कुछ आगे, क्योंकि वहां सिस्टम्स हैं आपको इस ड्राइव करने के लिए, आपको इस गाड़ी को 100% अपने कंट्रोल में रखने के लिए। ऐसे ये शरीर रूपी गाड़ी जो है, उसके लिए आत्मा रूपी ड्राइवर को कहाँ बैठना होगा? फ्रंट में। लेकिन कहाँ? उसके कंट्रोल के माध्यम या मीन्स ऑफ कंट्रोल कहाँ है? उसको देखना है तो किससे देखेगा? आत्मा किससे देखेगी? आंखों से। सुनना है, बोलना है, नहीं, ये सबसे मुख्य कंट्रोल है। मस्तिष्क, ब्रेन जो हमारा कंप्यूटर है, उसके द्वारा, स्टिमुलाई सिस्टम के द्वारा सारे ही शरीर को वो दिशा देता है आत्मा। तो इसलिए सारे कंट्रोल के मुख्य जो साधन है वो हमारे चेहरे में है। इसलिए आत्मा जो है यहाँ ब्रुकुटी के मध्य में निवास करती है, उसकी ड्राइविंग सीट वहां है। मध्य में कहाँ? अगर हम इस मस्तिष्क के बीच में, एकदम मध्य में, बीच में एक पाइप डालें और यहाँ ऊपर से भी मध्य में पाइप डालें, तो जहां ये दोनों पाइप्स मिलते हैं अंदर में, वहां आत्मा बैठी हुई है। वहां हाइपोथैलेमस के बाजू में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बाजू में आत्मा, ये सुंदर दिव्य लाइट बैठी हुई, तो वहां ड्राइवर में आत्मा बैठा हुआ हूं, और वहां से हम ये सारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। वैसे भी अगर हम देखें, शरीर मैटर है, मैटर मनस्थूल तत्वों से बना हुआ है, तो इसमें बहुत भारीपन है। आत्मा जो है वो लाइट है, ऊर्जा है। अब एक ग्लास ऑफ वाटर में आपने अगर एक ड्रॉप ऑयल डाला तो कहाँ होगा? ऊपर में फ्लोट करेगा। क्यों? वो लाइट है। ऐसे ही आत्मा जो है वो बहुत हल्की है, ऊर्जा है, इसलिए वो सारे शरीर में सबसे ऊपर के स्थान, मस्तक के मध्य में विराजमान है। और इसलिए आप देखिए कि जब भी आप कोई कर्म करते हैं, नहीं, और कभी कभी कोई कर्म का रिजल्ट जो है नेगेटिव हो जाता है, तब हम रियलाइज करते हैं, अरे मैंने ऐसा क्यों किया। कहते हैं ना, ऐसा मेरे से ये गलती हो गई। हाथ कहां जाता है? मस्तक पर। सोचने के लिए भी हाथ कहां जाता है? मस्तक पर। चिंता करते हैं तो भी हाथ कहां चला जाता है? मस्तक पर। तो हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि हम बार बार उस मस्तक पर हाथ रखते हैं, क्योंकि आत्मा वहां बैठी है। जो निर्णय लेने वाली है वो आत्मा बैठी। भाग्य के लिए भी हम कहते हैं कि मस्तक के मध्य में आत्मा जो है वो भाग्य बनाने वाली सत्ता है। तो भाग्य के लिए भी हम कहते हैं पता नहीं मेरा भाग्य कैसा है। क्यों? क्योंकि निर्णय कौन लेता है? आत्मा। वो अपने निर्णय से भाग्य बनाती है। तो आत्मा इस शरीर में, इस मस्तक के मध्य में विराजमान है। अब स्थूल नेत्रों से हम आत्मा को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आत्मा स्थूल नहीं है। शरीर किन से बना हुआ है? हमने देखा तत्वों से, 5 elements of nature जो है, प्रकृति जिसको हम कहते हैं, 5 तत्वों से बना है। ये आंखें भी 5 तत्वों से बनी हुई है। तो ये आंखों के द्वारा हम वही चीज देख सकते हैं जो तत्वों से बना हुआ है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, तो जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मेरे से साउंड वेव्स, आवाज के प्रकंपन आपके पास पहुंच रहे हैं ना। और आप कैसे सुन रहे हैं? कानों में क्या है हमारे? सेंसरीज है। तो हमारे कानों में जो सेंसर्स है उससे हम ये आवाज के प्रकंपन को कैच कर लेते हैं और सुन रहे हैं। अब ये आवाज के प्रकंपन, ये साउंड एनर्जी, साउंड वेव्स देख सकते हैं? ये स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं? है तो जरूर, हम सुन रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रही हूं, तो है तो जरूर, फिर क्यों नहीं देख सकते जी? ऊर्जा है, वो फिजिकल एनर्जी है, ऊर्जा है, इसलिए हम स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते। कई बार आपको कोई कहां स्थान पे पहुंचना है और आप कोई एड्रेस थोड़ा पूछ रहे हैं, क्लेरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आप रोज वहां नहीं गए हैं, रेगुलर आपका वहां जाना नहीं है, तो आप जिनसे पूछते हैं उनको वही स्थान पर उसके आसपास रहते हैं, वो जब आपको समझा रहे हैं तब आप सुनते सुनते आप बुद्धि से चित्र क्रिएट कर लेते हैं। आई सी, हाँ मैंने समझ लिया, हाँ उसके बाजू में, अच्छा मैंने जान लिया, आई सी। आपने इन आंखों से वो स्थान को देखा? देखा नहीं। कैसे देखा? कैसे देखा? बुद्धि रूपी नेत्र से, जिसको हम मन की आंखें कहते हैं, है ना। तो इसलिए यहां जब हम कह रहे हैं आई सी, तो ये नेत्र नहीं देख रहे हैं, बुद्धि देख रही है। आत्मा के अंदर में जो मन बुद्धि है उसके द्वारा हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आत्मा एक बहुत सुंदर, ये दिव्य लाइट है, जिसकी सीट अभी हमने देख लिया। अब जब भी मेडिटेशन हम बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बैठेंगे, तो हम मन की आंखों के द्वारा इस सुंदर लाइट को यहां विजुअलाइज करेंगे। जैसे अभी ये साउंड वेव्स हैं, इसको हम कैसे विजुअलाइज करते हैं? अगर पेपर पर अगर हमें ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करते हैं? वेव्स, वेव्स के रूप में ड्रॉ करते हैं ना साइंस में। ऐसे ही आत्मा को भी हम एक सुंदर सितारे के रूप में विजुअलाइज करते हैं। वास्तव में वो आकाश से, सितारे से भी सूक्ष्म है, लेकिन सिर्फ फॉर्म के रूप में, हम एक सुंदर सितारे के रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, एक स्पार्क ऑफ डिवाइन एनर्जी के रूप में विजुलाइज करते हैं। कैसे? मन की आंखों से, ठीक है। तो इसलिए जब भी अभी हम मेडिटेशन में बैठेंगे तो मन की आंखों से वो देखेंगे, और धीरे धीरे हम जैसे इसको विजुलाइज करते हैं, समझते जाते हैं, अनुभव करते जाते हैं, तो हमें सोल कॉन्शियसनेस जो है सहज होगा। अब आत्मा जो है वहां बैठकर क्या करती है, कैसे ड्राइव करती है इस फिजिकल बॉडी रूपी व्हीकल को, कैसे गाइड करती है इस लाइफ के जर्नी में इसको, तो आत्मा ये कर्म इंद्रियों के द्वारा कार्य करती है, जो मुख्य हमारे फिजिकल सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसको आत्मा राजा बनकर, मालिक बनकर गाइड करती है। तो ये हमारे फिजिकल सेंस ऑर्गन्स हैं, देखना, बोलना, सुनना, महसूस करना, फील करना, टच जो है। आत्मा वास्तव में जैसे हमने देखा वो ड्राइवर है, तो वो मालिक है। अगर कोई कारण से, कोई गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिम्मेवार कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ड्राइवर। अगर वो ड्राइवर कहे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये गाड़ी ने उस गाड़ी को बैंग कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया, आप स्वीकार करेंगे? आप स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? क्योंकि दिखाई तो देता है गाड़ी ने दूसरे गाड़ी को बैंग कर लिया, नहीं? क्यों नहीं स्वीकार करेंगे जी? कंट्रोल का जो पावर है वो किसके पास है? कंट्रोलिंग पावर ड्राइवर के पास है। इसलिए आत्मा भी ये कर्म इंद्रियों की मालिक है। लेकिन आज कभी कभी हम कह देते हैं ना, मुझे बोलना तो नहीं था, मुख से निकल गया, बोलते हैं ना, मुझे देखना नहीं था। जैसे आप यहां बैठे हैं, लेकिन कोई ना कोई कुछ पीछे से लेट आते हैं तो पीछे बैठते हैं, पीछे कहां अब वो बाजू ढूंढ रहे हैं जगह, कोई आगे आते हैं तो हमारा ध्यान चला जाता है, ध्यान चला जाता है। हाँ, तो हमें देखना नहीं था लेकिन आंखें वहां चली गई, मुझे सुनना नहीं था, मेरे कान वहां चले गए। हम कहते हैं ना ये, तो क्या हम ये दलील दे सकते हैं? दे सकते हैं। आत्मा तो मालिक है, आत्मा जो चाहे इन आंखों से देखे, जो नहीं चाहे वो आत्मा इन आंखों से नहीं देखे। जो सुनना चाहे वो सुने, जो नहीं सुनना है वो नहीं सुने। जो बोलना चाहे वही वो बोले, जो नहीं बोलना है वो इस मुख से नहीं बोले। तो आत्मा कैसे फिर से अपने कर्म इंद्रियों की राजा बन सकती है, मालिक बन सकती है? वो कंट्रोलिंग पावर जो है नेचुरल कैसे आ सकती है? जैसे ड्राइवर के पास वो नेचुरल कंट्रोलिंग पावर है ना, तो सामने से अगर गाड़ी आ भी जाती है, उसको लग रहा है कि एक्सीडेंट हो सकता है, वो क्या करता है? थोड़ा साइड ले लेता, कैसे भी करके ब्रेक करता है। वही एक्सपीरियंस ड्राइवर है ना, वही एक्सपीरियंस ड्राइवर, अनुभवी ड्राइवर होता है। तो उस रूप से आत्मा कैसे मालिक बनकर इस कर्म इंद्रियों के द्वारा राइट कर्म ही करे, वो स्वराज्य अधिकारी, वो अपने अंतर से जो कंट्रोलिंग पावर है वो राजयोग मेडिटेशन के प्रैक्टिस से आती जाती है। तो वास्तव में आत्मा मालिक है, लेकिन आत्मा भूल गई। अब सोचो अगर ड्राइवर भूल जाए कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं गाड़ी को, आप बैठना चाहेंगे उस गाड़ी में? पैसेंजर बनकर बैठना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि अगर वो भूल जाए कि वो मालिक है, वो कंट्रोल कर रहा है गाड़ी को, तो क्या होगा? अगर आंख लग गई तो क्या हो जाता है? कितने ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हम कितने प्रिय जन को इसमें खो देते हैं। तो इसलिए इस समय आत्मा क्या है? आत्मा जो है वो भूल गई है कि मैं मालिक हूं। तो आत्मा क्या हो गई? जैसे सो गई है, विश्राम में चली गई, भूल गई। तो वो कंट्रोलर नहीं रही, मालिक बनकर शरीर के द्वारा कर्म इंद्रियों के द्वारा करा नहीं रही है कार्य। अब आत्मा को कैसे ये शरीर के द्वारा कार्य कराती है? उसके पास कौन सी शक्तियां, उसके पास कौन सी कर्म इंद्रियां हैं? ये शिव बाबा परमात्मा हमको समझाते हैं कि आत्मा जो है उसके पास ये तीन सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, सटल सेंस ऑर्गन्स। जैसे हमने शरीर के देखे ना, फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये शरीर के हम देखते हैं फिजिकल सेंस ऑर्गन्स जो हमने अभी देखा कि हमारा देखना, बोलना, करना, ये सब शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा। ऐसे आत्मा की भी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्री माना जिस सेंस ऑर्गन के द्वारा हम कर्म करते हैं। तो आत्मा की ये सटल सेंस ऑर्गन्स कहो या फैकल्टीज कहो, तो आत्मा की ये सूक्ष्म शक्तियां हैं। ये तीन मुख्य शक्तियां हैं। परमात्मा हमें समझाते हैं कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। अब ये तीनों शक्तियां कैसे कार्य करती हैं ये हम जानेंगे, क्योंकि फिर से अगर कंट्रोलर बनाना है तो उसका राज्य जो है ये तीनों के ऊपर फिर से अगर अनुभव करना है तो हमें ये तीनों फैकल्टीज को जानना होगा, समझना होगा। तो पहली फैकल्टी है मन, फिर बुद्धि, फिर संस्कार। तो चलिए पहले मन के बारे में हम देखते हैं। अब मन क्या करता है? मन क्या करता है? मन क्या है? क्योंकि सुबह से रात तक बहुत बार हम शब्द यूज करते हैं, कहते हैं मेरा मन आज नहीं है, मेरा मन डिस्टर्ब है, मेरा मन दुखी है, मेरा मन लग ही नहीं रहा है। आपका मन तो यहां है ना, है ना? आप शरीर से तो यहां बैठे हैं, मन कहां है? मन यहां है कि मन बिना आपके परमिशन के कहां घूम रहा है? घूम रहा है, जो समझते हैं कि नहीं मन यहां ही है जब से आपने एंटर किया वो हाथ ऊपर कर। अच्छा, कुछ तो बहुत ऑनेस्ट आप बैठे हैं इसलिए आपने हाथ ऊपर नहीं किया। तो मन हमारे बिना परमिशन के लिए थोड़ा चक्कर लगाने जाता है, जाता है। मन सोचने की शक्ति है, परमात्मा हमें बताते हैं कि मन हमारी विचार शक्ति है। तो सुबह से रात तक मन जो है सोच रहा है। अब अगर हम क्वालिटी चेक करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज इस मन में है, आप सब में कई लोग अपनी अपनी फैक्ट्री संभाल रहे हैं, कई कंपनीज में वर्क करते हैं, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो देखा है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आपका हो लेकिन उसमें एक डिपार्टमेंट आप क्लोज कर लें, कौन सा डिपार्टमेंट? क्वालिटी कंट्रोल। क्योंकि अभी सुबह से रात तक आपको पता है आपका सब प्रोसेसेस है, आपको क्या प्रोडक्शन करना है वो भी पता है, सेल्स भी आपका फिक्स है, क्वालिटी का क्या मतलब? बंद कर देते, चलेगा? चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। रूटीन है ना आपका, प्रोडक्शन सब कुछ आपको पता है, फिर भी क्वालिटी चाहिए, क्योंकि आपकी मार्केटिंग जो है, आप अब जो मार्केट है उसको आपको बढ़ाना है, नेशनल से इंटरनेशनल जाना है, उसका आधार क्या होगा? क्वालिटी। अनफॉर्चुनेटली मन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये डिपार्टमेंट बंद है, नो क्वालिटी कंट्रोल। सुबह से रात तक हम क्या सोच रहे हैं ये हमें पता ही नहीं, हमारे कौन से विचार चल रहे हैं ये हमें पता ही नहीं। चल रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन से विचार चल रहे हैं पता ही नहीं। परमात्मा हमें बताते हैं कि सुबह से रात तक हमारे चार प्रकार के विचार चलते हैं। तो चलिए आज हम क्वालिटी चेक करेंगे, जरूरी है ना? जरूरी है। आप सोचिए आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर आपने क्वालिटी का डिपार्टमेंट बंद किया क्या होगा, सेल्स और मार्केटिंग में क्या होगा? और आप सोचिए मन में तो है ही नहीं, एक डिपार्टमेंट ही बंद है। अब जब हम चेक करते हैं तो हमें पता पड़ता है चार प्रकार के विचार, उसमें दो प्रकार के विचार हम जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तीसरा है व्यर्थ, चौथा है साधारण। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? आप ये कार्यक्रम में आने वाले थे, आपको निमंत्रण मिला, आपका बिजी शेड्यूल था, लेकिन फिर भी आपने सोचा चलो बहुत बार निमंत्रण मिला है और मुझे भी अच्छा लगता है, चलो एक बार तो जाना ही चाहिए, देखना तो चाहिए, ठीक है? तो आपने डिसीजन लिया और आप कल, आप सुबह पहुंचे हैं, दोपहर को पहुंचे हैं, तो शायद आप परसों निकल गए, या कई लोग कल निकल कर फिर पहुंचे। तो यहां आने के पहले, इस कार्यक्रम में भाग लेने के पहले हमारा पॉजिटिव थॉट क्या हो सकता है? आपने डिसीजन ले लिया आपको जाना है, अब आपका पॉजिटिव थॉट क्या हो सकता है कार्यक्रम के लिए? अजेंद्र भाई जी, बहुत अच्छे अनुभव होंगे, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और जी, अपने आप को बहुत अच्छी तरह हम इम्प्रूव कर सकेंगे और अच्छा अनुभव हम कर सकेंगे, और सबके होंगे ना, नहीं थे पॉजिटिव थॉट्स जी? अच्छे लोग मिलेंगे जी, ठीक है, कम लग रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट शायद इजी होगा, नहीं? नेगेटिव थॉट क्या आया होगा? ऑनेस्ट बनिए क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं बार बार निमंत्रण किसी हमारी बहनों ने या हमारे भाई बहनों ने दे देकर कहीं ना कहीं अंत में फोर्स से ही आ गए हैं, नहीं? तो नेगेटिव थॉट क्या आया होगा? बहुत काम, देखो पता नहीं कहाँ तीन दिन अभी मेरा टाइम जाएगा वहां, नहीं? और जी, कुछ मिलेगा नहीं, वापस वही बातें सुनेंगे, हम पहले भी सुनते आए हैं, टीवी पर भी देखते आए हैं, प्रैक्टिकल में तो कुछ होता नहीं है, वापस वही मेरा काम बढ़ जाएगा, फिर आके सारा काम करना पड़ेगा, नहीं? अच्छा, ऑनेस्टली कहें तो आए थे ना, थे ना? व्यर्थ संकल्प कौन सा आ सकता है? वेस्ट थॉट कौन सा आ सकता है जी? गोखला, अच्छा और वेस्ट थॉट और क्या आ सकता है, व्यर्थ, नेगेटिव नहीं है लेकिन व्यर्थ है, उस थॉट का कोई प्रयोग नहीं है, अनप्रोडक्टिव थिंकिंग जी। बारिश आ जाएगी फिर क्या करेंगे, नहीं, और पता नहीं क्लाइमेट कैसे होगा, गर्मी तो नहीं होगी, वैसे तो माउंट पर नहीं होगी लेकिन जी, रहने को कैसे मिलेगा पता नहीं, कंफर्टेबल होगा या नहीं, खाना कैसे होगा, सात्विक भोजन होगा, टेस्टी होगा या नहीं, नहीं, और मेडिटेशन में कर पाऊंगा, मैं बैठ पाऊंगा, इतना एक एक घंटे सेशंस होंगे, सुन पाऊंगा, तो बहुत सारे प्रश्न विचार जो है, प्रश्नचित्त विचार, ये वेस्ट थिंकिंग, अनप्रोडक्टिव थिंकिंग, कोई रिजल्ट नहीं। और लास्ट है ऑर्डिनरी रूटीन। अब आपको यहां पहुंचना है तो आपने अपनी टिकट कराई है, तो चलो आप फ्लाइट से आए हैं, आप ट्रेन से आए, इतने बजे आपको पहुंचना है स्टेशन, फिर वहां से ये ऑर्गेनाइज करना है, फिर वहां गाड़ी आपको लेने आएगी, यहां पहुंचे तो यहां आपको व्हीकल आइए, इसको कांटेक्ट करना है, वो नंबर, जो भी हमारा लॉजिस्टिक्स है, जो भी हमारा डेली कारोबार के विचार है, ठीक है, क्लैरिटी हो गई। तो अब सबसे ज्यादा अगर हम साक्षी होकर एक मिनट के लिए आंखें बंद करके चेक करें, सुबह से रात तक हमारे सबसे ज्यादा विचार किस क्षेत्र में है, एक मिनट अपने आप से पहले बात करें, सुबह से रात तक, आप सुबह घर में टाइम स्पेंड करते हैं पहले, फिर अपना कारोबार साथ में कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कारोबार कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑफिस में पहुंचते हैं, आप अपने बिजनेस में पहुंचते हैं, वहां लेन देन करते हैं, कुछ चीजें होती है ठीक, कोई नहीं ठीक होती है चीजें, सारा दिन कारोबार होता रहता है, बिजी भी है, सिचुएशंस भी आती है, डिफिकल्टीज भी आती है। तो अगर हम अंदर से चेक करें, सबसे ज्यादा विचार कौन से चलते हैं जी, वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। वेस्ट थॉट्स बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, है ना, तो क्वालिटी चेक करें तो वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव ही ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा। अगर आपने चेक किया कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है प्रोसेस में, उसमें वेस्ट सब फॉल्टी प्रोडक्ट्स ही बन रहे हैं, तो क्या करेंगे, कुछ करना तो पड़ेगा ही ना। एक प्रोडक्ट भी अगर आपका, खास करके अगर कोई बहुत स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक भी वेस्ट हुआ तो बहुत नुकसान हो जाता है, क्या करेंगे जी, रिसाइकल करना होगा। तो यहां राजयोग का मेडिटेशन से परमात्मा हमें सिखाते हैं कैसे हम अपने नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को रिसाइकल करके पॉजिटिव में चेंज करें। अब हमारे पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो किससे होते हैं, जब आत्मा अपने ओरिजिनल नेचर, जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, उसके आधार से चिंतन करती है, तब वो सकारात्मक संकल्प निर्माण करती है, शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति, आनंद, पवित्रता, इसके आधार से जो चिंतन हमारा चलता है, जब ये एक्टिवेटेड होता है, ये ओरिजिनल नेचर एक्टिवेटेड होता है और ये हमारे डेली लाइफ की सिचुएशंस को इम्पैक्ट करता है, इंटरैक्शंस में रिफ्लेक्ट करता है, तब हमारा संकल्प पॉजिटिव चलता है, हम पॉजिटिव थॉट्स करते हैं। अब पॉजिटिव थिंकिंग में भी दो प्रकार के, एक है कंडीशनल पॉजिटिव थिंकिंग, एक है अनकंडीशनल। कंडीशनल माना परिस्थिति बहुत अच्छी है, जैसे यहां वातावरण अच्छा, अच्छी बातें, अच्छा संग, भोजन भी आए हो, अच्छा ही लग रहा है आपको, परमात्मा की याद में बना हुआ है, तो इसलिए ऐसे वातावरण में अच्छे विचार आ रहे हैं। लेकिन फिर से कारोबार में आप जाएंगे, वही डिफिकल्टीज होगी, कई लोग थोड़ा मैनेज करना, उनके साथ रिलेशनशिप डिफिकल्ट है, उनका व्यवहार हमेशा प्लेजेंट नहीं है, अकस्मात इमरजेंसीज आ जाती है, विचारों में अंतर होता है, घर में किसी कोई की तबीयत खराब हो जाती है, कहां परिवार में किसी का देहांत हो जाता है, ऐसे समय पर हम सकारात्मक शक्तिशाली विचार क्रिएट करें, उसके लिए कहा जाता है अनकंडीशनल पॉजिटिव थिंकिंग। तो मन को हम सशक्त कैसे बनाएं, जो हर परिस्थिति में हम सकारात्मक और शक्तिशाली विचार क्रिएट कर सके। अब विचार जो है नेगेटिव हमारे कमजोरियों के आधार से चलते हैं। जब क्रोध है, ईर्ष्या है, अहम भाव है, इसको हम प्रयोग कर रहे हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं, इसके प्रभाव में है, तब नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। जब हम पास्ट के बारे में सोचते जा रहे, हो गया उसके बारे में सोचते जा, ऐसा क्यों हुआ, उसने क्यों ऐसा किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, या भविष्य के बारे में कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो है अनप्रोडक्टिव थिंकिंग, वेस्ट, चिंता, व्यर्थ संकल्प। और जो कारोबार के लिए हमारे रोज के विचार, वो हमारे रूटीन। हमने देखे ज्यादा से ज्यादा हमारे व्यर्थ और नेगेटिव है। अच्छा, अगर हमारा साधारण विचार भी चल रहा है तो वो भी क्या हुआ, साधारण विचार में शक्ति भी नहीं बढ़ी, वेस्ट भी नहीं। अब आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, लॉस भी नहीं हो रहा है, उस बिजनेस को क्या कहेंगे? वो भी तो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है ना, क्योंकि टाइम एनर्जी तो आपका इन्वेस्ट तो हो ही गया है। तो हमारा हर संकल्प हम कैसे सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएं, एवरी थॉट को हम कैसे पावरफुल और पॉजिटिव बनाएं, ये एम, ये लक्ष्य लेकर हम मन को सशक्त करते हैं, मन को री इंजीनियर करते हैं। अब मन तो हम देखते हैं, कई बार हम कहते हैं दो मन है, मन दो नहीं है, क्योंकि एक को मैनेज करना है कितना चैलेंजिंग है। तो थैंकफुली मन एक ही है, लेकिन मन में दो प्रकार के विचार आए, जिसको निर्णय लेने वाली जिस पर बुद्धि है, तो बुद्धि का काम क्या है, वो विजुलाइज करती है। नहीं, यहां बैठे मैं आपको कहती हूं कि आप अपने परिवार को देखें। आज सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कर रहे थे तो आपको कहा जा रहा था कि परिवार के सदस्यों को देखें, उनको शांति की ऊर्जा भेजें, परमात्मा का स्नेह भेजें। तो आपने देखा, यहां तो आपके सामने नहीं है, शायद कई तो हैं अपने परिवार के साथ, बट वैसे तो आपका परिवार यहां नहीं है, तो कैसे देखा आपने, कैसे देखा, विजुलाइज किसने किया, बुद्धि ने। मन की आंखें जिसको आप कहते हैं वो बुद्धि है, इंटेलेक्ट विजुलाइजेस, बुद्धि अंतर चक्षु भी कहते हैं, वो विजुलाइज करती है, समझती है और फिर विश्लेषण करती है, एनालाइज करती है और फिर जो रीजनिंग करती है, ये करने से क्या, ये करने से क्या, ये ऑप्शन लिया तो फिर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, नहीं अच्छा नहीं ये करते हैं, ये इसका क्या रिजल्ट होगा, वो सब प्रोज एंड कॉन्स वे करके, रीजनिंग करके फिर बुद्धि निर्णय लेती। और जो निर्णय बुद्धि लेती है वो कर्म में आप ट्रांसलेट करते हैं, फिर उस अनुसार कर्म करते हैं। और जो कर्म हम बार बार रिपीट करते हैं वो क्या बन जाता है, क्योंकि वो कर्म बार बार रिपीट हो रहा है तो एक बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है, हमारा एक स्वभाव संस्कार बन जाता है, तो उसको हम फिर संस्कार कहते हैं। तो बार बार जो कर्म हुआ वो संस्कार। अब संस्कार जो है वो भी पांच फोल्डर्स हैं, आपने सुना भी होगा हमारे सेशंस में, हम शिवानी बहन भी बहुत प्यार से ये हमें और स्पष्ट करती हैं, आपसे मिलेंगे भी प्रोग्राम में। तो ये पांच फोल्डर्स परमात्मा हमें बताते हैं। पहला है जहां हम, वो संस्कार है जो हमारे पांच जर्नी से आए हुए। आजकल हम कई बार देखते हैं छोटे बच्चे, चाइल्ड प्रोडिजीज उनको कहते हैं, नहीं, छोटे छोटे बच्चों में बहुत सुंदर कलाएं होती हैं, है ना, टीवी पर कई ऐसे रियलिटी शोज भी होते हैं, बच्चों के कलाओं को सामने रखते हैं, तो छोटेपन में ही वो गीत गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कंप्यूटर कर रहे हैं, तो वो बच्चे ने उस जीवन यात्रा में अब तक उसकी कोई पढ़ाई या शिक्षा नहीं ली है, लेकिन वो एक अंतर से उसको एक संस्कार के रूप में, एक विशेषता, वो कला के रूप में आत्मा के अंदर समाई है। तो पांच जर्नी से, घर में भी अगर आप देखो दो तीन बच्चे हैं तो हरेक के संस्कार अलग हैं, पालना एक है आपकी माता पिता की, लेकिन संस्कार अलग हैं, कोई बहुत शांत है, क्रिएटिव है, कोई बहुत प्रभावशाली है, बोलता है, एक्सट्रोवर्ट है, तो उस रूप में संस्कार पांच से आए। फिर कुछ परिवार देते हैं, हमारे माता पिता परिवार देते हैं, हम कहते हैं इस परिवार के इसलिए इसके ऐसे संस्कार हैं, फ्रेंड्स देते हैं, मैन इज नोन द कंपनी की, संघ का रंग लगता है, जिनके साथ हमारी लेन देन है कारोबार में, उनके विचार, उनकी बिलीफ सिस्टम्स, वो हमें प्रभावित करती है, वो संस्कार हम अपने अंदर भरते जाते हैं और कुछ संस्कार हम स्वयं अपने अंदर भरते हैं चॉइस से, सोसाइटी के अंदर एक्सपोजर से हम चॉइस से वो संस्कार भरते हैं। कुछ हमारे प्रोफेशनल संस्कार भी हमने भरे हैं, कुछ योग्यताएं अपने में भरी हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी भर दिया, थोड़ा थोड़ा अहम भाव भी भर दिया, नहीं भरा ना थोड़ा वो संस्कार भी अपने में डाल दिया ना, थोड़ा ईर्ष्या भी, थोड़ा इनसिक्योरिटी भी। और ये पांचवा जो फोल्डर है वो परमात्मा के दिए हुए संस्कार जो बहुत सुंदर हैं, दिव्य हैं। परमात्मा ने हमें अपने गुण और संस्कार दिए हुए, माता पिता है ना, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे ही हम आत्मा अपने आप को समझते हैं कि हम उसके बच्चे हैं, तो आत्मा के अंदर के निज गुण ओरिजिनल संस्कार अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम सबके मोबाइल में कुछ ओरिजिनल सेटिंग्स होती है, नहीं फैक्ट्री सेटिंग्स होती है, कभी कभी कोई प्रोग्राम, कुछ मैसेज है, कुछ हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो मैसेज आ जाता है कि ये फोल्डर आप डिलीट करेंगे तो ओरिजिनल सेटिंग्स ही इम्बैलेंस हो जाएगी। तो आत्मा, हरेक आत्मा के अंदर ये ओरिजिनल परमात्मा ने गुण दिए हुए हैं। पहला है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसलिए हमें शांति प्रिय लगती है, यहां का वातावरण हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं? कोई व्यक्ति कितना भी क्रोध करे फिर भी उसको प्रिय क्या है, शांति। वो कहेगा मुझे शांति चाहिए, वो सारा दिन भर वो व्यक्तित्व में बहुत कहीं ना कहीं हर बात में अपसेट हो रहा है, डांट रहा है, क्रोध कर रहा है, लेकिन चाहिए शांति क्योंकि वो हमें खींचती है, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल संस्कार है। हमें हर एक को ज्ञान खींचता है, कुछ नया जानना। नहीं, हम जैसे ही सुबह उठते हैं पहले क्या करते हैं, मेल चेक करते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, रात को भी उठते हैं तो भी चेक करते हैं, चेक करते हैं ना क्योंकि हमें कुछ नई जानकारी, क्या नया हुआ। तो आत्मा का निज गुण है ज्ञान। देखिए, अब हमने देखा जो सारा ज्ञान है वो किससे ओरिएंटेड है, बाह्य जगत से, बाह्य व्यक्तित्व से। अंतर के जगत के बारे में नहीं जानते, इनर सेल्फ के बारे में नहीं जानते, इसलिए असंतुलन है। इस समय सृष्टि में अगर देखें तो इंफॉर्मेशन बहुत सारी है और यहां बैठे बैठे आपको जो जानकारी चाहिए आप यहां बैठे बैठे ले सकते हैं। जानकारी बहुत है लेकिन क्या हम ज्यादा समझदार बने हैं, अभी वो वाइजअप क्या कहेंगे, सोशल मीडिया से जो आप रोज देखते हैं सुनते हैं, अभी वो वाइजअप समझदार ज्यादा है, हेल्थ ट्रीटमेंट्स ज्यादा है, हॉस्पिटल्स ज्यादा है, मेडिकल रिसर्च ज्यादा है, अभी वो हेल्थियर, क्या हम ज्यादा स्वस्थ हैं, अभी वो हेल्थियर देना ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे पास कम्युनिकेशन के माध्यम बहुत हैं, नहीं यहां बैठे भी हम अभी सुनते सुनते भी आप कोई मैसेज भेज सकते हैं, कम्युनिकेट हो जाएगा विश्व को, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। पर आर रिलेशनशिप्स मोर क्लोजर, क्या हम ज्यादा समीप हैं, संबंध हमारे समीप हैं, और तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमने अपने बारे में नहीं जाना। परमात्मा आकर ये ज्ञान देते हैं, सत्य ज्ञान, शांति, प्रेम, हम आत्मा हैं प्रेम स्वरूप। हमें हर व्यक्ति को अंदर से इच्छा होती कि सभी मुझे प्यार करें, हमें रिस्पेक्ट करें। कोई भी एक संबंध हो जहां आपको प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे कार्य क्षेत्र हो, क्या आप कंफर्टेबल रहेंगे, असंतुष्टता है, रेस्टलेसनेस है। हम अपने आप को भी अगर प्यार नहीं करते हैं तो भी हम लो फील करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, अपने आप से भी खुश नहीं है। तो प्यार जो है ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। यहां परमात्मा हमें सिखाते हैं अपने आप से भी कैसे प्यार करना, परमात्मा से भी प्यार करना और आपस में भी आत्मिक संबंध में स्नेह। फिर है हम देखते हैं शक्ति, अंतर की शक्ति, मनोबल, जहां आत्मा मालिक बनकर ये कर्म इंद्रियों के द्वारा कार्य कराए, मालिक बनकर मन बुद्धि संस्कार को दिशा दे। फिर आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है आनंद। ये छह गुण जब खुशी, एक मिस किया, खुशी आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव है। इसलिए आप देखिए हम सब खुश रहना चाहते हैं और जैसे हम थोड़ा भी दुखी हैं, थोड़ा भी लो फील करते हैं, थोड़ा उदास होते हैं, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम कोई ना कोई माध्यम यूज करते हैं फिर से अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, लाइट करने के लिए। कई लोग गीत सुनते हैं, कई लोग फोन उठाकर किसी से बात कर लेते हैं, कई लोग कुछ अच्छा खाते हैं, कई लोग कुछ टीवी या मोबाइल से कुछ देखते हैं, नहीं? क्या ये प्रयास किसके लिए है? ऑल दीज एफर्ट्स आर फॉर व्हाट? टू कम बैक टू अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, वापस खुश, वापस उस आनंद की अनुभूति में। तो आत्मा का ये निज स्वभाव है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। और ये सातों गुण जब मुझे आत्मा में है, तब मैं आत्मा आनंद की स्थिति में स्थित हूं। अब हम मेडिटेशन से क्या करते हैं, रोज ये आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं। क्योंकि आज क्या है, आत्मा की स्मृति भी नहीं है, न आत्मा के गुणों की ऊर्जा अनुभव कर सकते हैं। शांति है अंदर, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। जैसे कोई सिचुएशन में क्योस आता है, हमें उसका प्रभाव पड़ जाता है, हमें थोड़ा इरिटेशन आता है, गुस्सा आता है, हमारा अंतर मन बुद्धि कहती है गुस्सा नहीं करो, शांत हो जाओ, लेकिन हमें अंदर में वो शांति का अनुभव नहीं है, हम एक्सेस नहीं कर पाते उस शांति की ऊर्जा को, क्योंकि उस ऊर्जा को हमने अक्यूमुलेट नहीं किया, भरा नहीं है। जो चीज अंदर भरा है वही यूज कर पाते। अब मेडिटेशन से, राजयोग से हम रोज ये गुणों को अपने अंदर चार्ज करेंगे। अब इससे हम स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि ये सातों गुण हमारे शरीर की ऊर्जा को सशक्त करती है। शांति की ऊर्जा जो है वो हमारे ENT सिस्टम को नरिश करती है। इसलिए हम कई बार कहते हैं, कोई व्यक्ति बहुत तावला है, बहुत अधीरे होकर काम करता है, हम कहते हैं शांत हो जाओ, टेक अ ब्रेथ, शांति का श्वास लो, कहते हैं ना, क्योंकि शांति जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाती है। प्रेम जो है, स्नेह जो है, वो हमारे कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को नरिश करती है। तो दिल में हरेक के लिए शुभ भावना, दुख की फीलिंग्स जो है, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, वो जब दिल में समाया हुआ है, तब आज हम इतने सारे चैलेंजेस हार्ट से संबंधित देखते हैं। लेकिन सबके लिए शुभ भावना। फिर हम देखते हैं ज्ञान जो है वो हमारा न्यूरो सिस्टम जो है उसको नरिश करता है। हमारा जो आनंद है स्वरूप स्थिति, वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो हॉर्मोन सिक्रीशन है उसको नरिश करता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी पवित्रता जो है वो गुण हमारा क्लेंजिंग सिस्टम जो है, हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको नरिश करता है। खुशी जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नरिश करता है। इसलिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर जो है, दादी माँ कहती थी भाई खुशी से खाओ, मुंह बना के नहीं खाओ, खुशी से खाओ पच जाएगा, कहते थे ना। तो हम देखते हैं आज वो अंदर में खुशी नहीं है, कितने सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो ये गुण जो है, शक्ति जो है, वो हमारे फिजिकल जो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसको नरिश करता है। तो ये सारे गुण जो है वो हमें शक्तिशाली शरीर को भी नरिश करने में मदद करते हैं। तो जब आत्मा अपने अंतर के गुणों को अनुभव करती है और अपने आप को सशक्त बनाती है, तब जाके सारा दिन कारोबार में हर परिस्थिति में इन गुणों को यूज कर सकती। अब ये आत्मा को ये गुण अनुभव करना है, तो उसको अनुभव करने के लिए एक तो स्वयं अंतर से अनुभव करते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हमें उसको रिचार्ज करना है तो हमें स्रोत से भी अपने मन बुद्धि को जोड़ना है, जो परमात्मा स्रोत है जिससे हम ये गुणों को रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ समय के लिए हम इसका अनुभव करें और ये हम देखें कि सारे दिन में सुबह से रात तक इन गुणों को यूज करते करते हम अपने कारोबार और संबंध संपर्क को और शक्तिशाली और सशक्त कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये शक्ति जो हम अनुभव करेंगे मेडिटेशन से, इसको यूज कहाँ करना है, प्रैक्टिकल हमारे डेली रिस्पॉन्सेज में। मैं योगी हूं, मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूं, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, हमारे डेली responses. जिस प्रकार से हम situation, relationships, परिस्थितियों को deal कर रहे हैं वहां दिखाई देगा. आपने मोबाइल चार्जिंग पर रख लिया कुछ समय के लिए, आपने निकाल दिया कुछ समय के बाद और देखा से अभी भी 2% है. फोन कर रहे हैं कट हो रहा है, 1% स्विच ऑफ होता है, माना चार्जिंग नहीं हुआ. बैठे मेडिटेशन में, लेकिन फिर सारे दिन में दिनचर्या में हम अपने मन को उस शांति की अनुभूति में रहकर कारोबार नहीं कर सके. किसी के प्रति हमारे थोड़ा अंदर से वैर भाव बार बार आ रहा है, माना चार्जिंग पूरा कंप्लीट नहीं किया है. तो जैसे जैसे हम ये चार्जिंग करते जाएंगे ये गुण हमारे अंदर अक्यूमुलेट होंगे, पावर अक्यूमुलेट होगी जो हम यूज कर सके. ठीक है, तो कुछ समय के लिए इसका हम अनुभव करते हैं. तो थोड़ा एकाग्रचित होकर बैठेंगे. जब भी हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़े समय के लिए हम अपने आप को सब चीजों से फ्री कर देंगे. तो मोबाइल है तो हम बाजू में रख लेते हैं, जो भी चीजें साथ में हैं. और फिर हम मन को भी, इसकी विधि हम सीखेंगे, हमारा लेसन भी होगा, लेकिन बैठने के बाद मन और बुद्धि को कुछ समय के लिए बाहर से हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे. फिर वापस कारोबार में आएंगे, फिर वापस हम संबंधों में आएंगे, लेकिन वो 5 मिनट की छुट्टी ब्रेक ले लेंगे. ठीक है, और फिर क्योंकि आप प्रैक्टिस अभी शुरू कर रहे हैं तो जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सहयोग देते हैं, हाथ पकड़कर चलाते हैं. नहीं, ड्राइविंग भी जब हम शुरू शुरू में सीखते हैं तो क्या करते हैं, जो एक प्रैक्टिस ड्राइवर है ना, अनुभवी ड्राइवर, उसको बिठाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले, गाइडेंस मिले. इसी रूप से हम आपको कुछ विचार देते जाएंगे. तो जब हम मेडिटेशन शुरू में कर रहे हैं तो गाइडेड कमेंट्री से करने से मदद मिलेगी, बट कुछ समय के बाद आप नेचुरली अंतर से आपके ये कॉन्वर्सेशंस अपने साथ कर सकेंगे स्वचिंतन से. चलिए कुछ समय के लिए हम स्वचिंतन में चलते हैं. आंखें हम खुली रखते हैं राजयोग मेडिटेशन में. आप अपना ध्यान कुछ समय के लिए सामने भी एकाग्र कर सकते हैं या जो वक्ता है उनके मस्तक के मध्य में भी देख सकते हैं. कुछ समय के लिए मन को बाहर की बातों से समेट लेते हैं, बाह्य जगत से अपने मन और बुद्धि को डिस्कनेक्ट करते हैं. और आज हम इस अंतर की जगत को देखना आरंभ करते हैं. अब हमने समझ लिया है कि ये बाह्य शरीर जो बहुत वैल्यूएबल है, ये हमारा एक बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, व्हीकल है. इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाली, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं एक सुंदर आत्मा हूं. मन की आंखों से मस्तक के मध्य में एक सुंदर लाइट को विजुलाइज करें, एक सुंदर दिव्य सितारा. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं. मन की आंखों से देखें कि सुंदर शुद्ध सितारे से इस डिवाइन स्पार्क ऑफ लाइट से शांति का वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहा है. महसूस करें शांति मेरा अपना गुण है, शांति मेरा निज स्वभाव है, स्वधर्म है. ये अंतर की शांति मुझे कितनी प्रिय है. शांत रहना, रिलैक्स रहना, लाइट फील करना, ये मेरा स्वभाव है. ये शांति की फीलिंग मेरा नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है. अंतर से इस शांति को महसूस करें। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, मन की आंखों से देखें कि मस्तक के मध्य में ये सुंदर लाइट जो कितना शुद्ध है, पवित्र है, मुझे आत्मा से पवित्रता के वाइब्रेशंस, पवित्रता के प्रकंपन चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं आत्मा शुद्ध दिव्य हूं, मेरे अंदर गुण और शक्तियां समाई हुई है। मन की आंखों से अब अपने आप को अपने दैनिक कार्य में देखें, डेली रूटीन में देखें, सुबह उठने से लेकर रात्रि तक जो आपका डेली रूटीन है, एक ऑब्जर्वर के रूप में अपने मन के स्क्रीन पर देखें, महसूस करें कि इस अवेयरनेस में हम हैं। मैं शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। इस अवेयरनेस में, स्मृति में रहते हुए हम अपने परिवार के संबंधों में बातचीत कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, कुछ बातें आती है तो साथ में मिलकर उसका समाधान कर रहे हैं। अब अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र पर देखें। जैसे ही आप ऑफिस या कारोबार में पहुंचते हैं, आप इस स्मृति में हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। उसी स्मृति में रहकर आप अपने कारोबार के जानकारी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जानकारी की लेन देन करते हैं, कुछ लोग आपसे मिल रहे हैं, समस्या लेकर आए हैं, आप इसी स्मृति में रहकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, समस्या का समाधान कर रहे हैं। सारा दिन बीच बीच में आप समय निकालकर इस स्मृति में अपने आप को ले आते हैं कि आप पवित्र स्वरूप आत्मा है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। अंतर से इस शांति और शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब पुनः अपने आप को फिर से यहां इस संगठन में ले आए, मन को फिर से हम अपने वर्तमान में ले आते हैं, अपने आप को फिर से यहां इस संगठन में बैठा हुआ देख रहे हैं। आंखें अगर बंद है तो आंखों को खोल देते हैं। अब हम आसपास देख रहे हैं, अपने संगठन को भी देख रहे हैं, लेकिन अंतर में उस गहरी शांति को और पवित्रता को अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ही मुझे सारा दिन कारोबार में लेन देन करते हुए भी इस स्मृति को बार बार ले आना है. ओम.